आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लास 10th के साइंस का 12th चैप्टर है और आज की क्लास के अंदर बेसिकली हम लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, क्योंकि बाकी सारा चैप्टर जो है वो हम लोग लास्ट क्लास में ही खत्म कर चुके हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर डायरेक्टली स्टार्टिंग करें डिस्कशन। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कैपिटल आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश देन द रेशियो ऑफ आर अपॉन आर डैश इज। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहला जो रेजिस्टेंस आपके पास है आपके रेजिस्टर का, वो है कैपिटल आर। जब आप इसे 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर देंगे तो क्या होगा कि इसका अब रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि 5 इक्वल पार्ट्स में कट करने का मीनिंग ये है कि आपने लेंथ घटा दी है, आपके रेजिस्टर की लेंथ आपने 1/5 कर दी है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आपके नया रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो R बाय 5 होगा। तो अब जो नया रेजिस्टेंस का वैल्यू हर एक रेजिस्टर का है वो कितना है, R बाय 5 है। तो आपके पास ऐसे 5 रेजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R बाय 5 है। अब आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, अगर आपको पैरेलल कनेक्शन के रेजिस्टेंस निकालनी हो तो आपको क्या पता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो आप कह सकते हैं कि आप R डैश को कैसे लिखेंगे, आप R डैश को लिखेंगे 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से। आपके पास 5 रेजिस्टर्स हैं तो आपको 5 टाइम्स 1/R1 प्लस 1/R2 उस तरीके से करना है। उसमें से भी जो आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उसमें होता है 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की जगह यहाँ पर क्या आपको दिया है, R डैश। तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, लेकिन यहाँ पर सभी रेजिस्टेंसेज की वैल्यू जो है वो इक्वल है और वो है कितनी, वो है R बाय 5। तो आपको क्या लिखना है, बेसिकली आपको 5 बारी 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। तो आपने क्या लिखा, 1/R डैश इज इक्वल टू 5 इंटू 1/R/5। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 1/R डैश इज इक्वल टू 25/R। उसके बाद और सॉल्व करोगे तो आपको रेशियो क्या चाहिए, आपको रेशियो चाहिए R/R डैश। तो आपके पास 1/R है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या है, 25/R। तो कैपिटल R को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, फिर आप लिखेंगे R/R' इज इक्वल टू 25। तो इस तरीके से आपको क्या मिला, R/R' 25। तो ऐसे आप लोगों को कैलकुलेशंस करनी होती है। तो D ऑप्शन करेक्ट है, 25 आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है I2R, दूसरा है IR2, तीसरा है VI और चौथा है V2/R। तो आपको याद होगा आपने जो पावर का फॉर्मूला पढ़ा है वो आपने क्या पढ़ा है, कैपिटल V इंटू कैपिटल I। अगर V की जगह हम IR डाल देते हैं तो पावर का एक और फॉर्मूला मिल जाता है I2R। एक और बार ओम्स लॉ लगाते हैं तो हमें पावर का एक और फॉर्मूला मिल जाता है V2/R। तो ये 3 तो करेक्ट है और इनमें से गलत कौन सा है, बी ऑप्शन IR2। पावर का ये फॉर्मूला नहीं होता तो आप इसे ही टिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, व्हाट इज व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V2/R। और आपके क्वेश्चन में रेजिस्टेंस नहीं बदला जा रहा है, जो आपका बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रह रहा है, रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो आपके बल्ब का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ऐसे में आप क्या कह सकते हैं कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V2। अब पावर फर्स्ट केस में आपको 100 वाट दी है और उस वक्त आप जो पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं वो कितना है, 220 वोल्ट। तो आप लिखेंगे 100 इज इक्वल टू 220 होल स्क्वायर। उसके बाद डिवाइड करेंगे तो आप लिखेंगे, सबसे पहले तो आपने लिखा 100 इज इक्वल टू 200 होल स्क्वायर, इसको डिवाइड किया तो आपने लिखा पी, कैपिटल पी इज इक्वल टू 110 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें कैपिटल पी ही निकालना है क्योंकि आपसे दो सिचुएशंस बोली गई है। आपको पहली सिचुएशन बोली गई है कि आपका बल्ब जो है उसकी पावर रेटिंग, वो पावर जो कंज्यूम करता है वो कितनी करता है, 100 वाट करता है, तब जब आपका सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट हो। लेकिन यहाँ पर आपको 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया नहीं जा रहा है, आपके बल्ब को उसका आधे वैल्यू का पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है, 110 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो आपका बल्ब पावर कंज्यूम करेगा वो भी कम करेगा। अब हम बेसिकली जानना चाहते थे कि वो कितना वैल्यू का पावर कंज्यूम करेगा, तो इसलिए हमने क्या किया, पावर का दो बार फॉर्मूला लगाया। पहले केस में मैंने आपको बताया कि पावर को हम मान के चल रहे हैं कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रह रहा है, रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपने लिखा 100 इज इक्वल टू 220 होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल पी इज इक्वल टू 110 होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 अपॉन कैपिटल पी इज इक्वल टू 220 अपॉन 110 होल स्क्वायर। अब 220 और 110 जो है ये कैंसिल आउट कैसे होंगे, 110 जो है उसका 2 टाइम्स करोगे तो 220 आ जाएगा। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 100 अपॉन कैपिटल पी इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर, और सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे 100 अपॉन कैपिटल पी इज इक्वल टू 4, और सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे कैपिटल पी इज इक्वल टू 100 बाय 4। आप डिवाइड कर लोगे तो 25 आ जाएगा आंसर, तो इसका मतलब जो पावर कंज्यूम्ड है वो है 25 वाट। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस वुड बी। अब यहाँ पर जो आपको कंडक्टिंग वायर्स दी हैं, इनका ये आपको बताना कि उनकी इक्वल लेंथ है और इक्वल डायामीटर है। ये इसका मीनिंग है कि ये कहना चाहते हैं कि आप ट्रीट करो इन वायर्स को एज सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंसेस। और उसमें से भी आपको क्या बोला है कि इनका लेंथ भी सेम है इन दो वायर्स का, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है क्योंकि डायामीटर सेम है, साथ में इनका मटेरियल भी सेम है। इसका मतलब है दो रेजिस्टर्स आपके पास है जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है। तो ऐसे में क्या लिखेंगे, आप मान लो, अज्यूम कर लो कि दो रेजिस्टर्स, दो वायर्स जो है वो बेसिकली रेजिस्टर्स हैं, तो दो रेजिस्टर्स ऐसे हैं जिनकी रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर है। अब आपके पास हीट का फॉर्मूला क्या है, आपके पास हीट का फॉर्मूला होता है एक तो कैपिटल वी इंटू कैपिटल आई। तो ये वाला फॉर्मूला तो हम यूज करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर करंट के बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया है। दूसरा फॉर्मूला आपके पास होता है आई स्क्वायर इंटू आर, तो यहाँ पर भी हम इसे नहीं यूज कर सकते क्योंकि करंट के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है, हमें बताया गया है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में। तो एक फॉर्मूला बच जाता है वी स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो हमारा हीट जो है उसका फॉर्मूला है कैपिटल वी स्क्वायर बाय आर इंटू स्मॉल टाइम टी। टाइम तो दोनों ही केसेस में सेम है। अब दो केसेस क्या है, केस ये है कि पहले केस में आपने रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया हुआ है और दूसरे केस में आपने रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू, आप रेशो निकाल रहे हैं और H1 क्या है, H1 इज इक्वल टू आपका V स्क्वायर बाय R, और V जो है वो दोनों केसेस में सेम है, सीरीज में लगाया तब भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही है और आपने पैरेलल में लगाया तब भी पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V ही है। तो आप क्या लिखेंगे, H1 इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 2R, क्योंकि सीरीज में आपका रेजिस्टेंस कैसे आता है कॉम्बिनेशन का, R प्लस आर, क्योंकि यहाँ पर आपके दो रेजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है और हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कैपिटल R है, क्योंकि मान सकते हैं हम, या तो हम पूरा इलैबोरेट करके लिखें कि R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, या फिर हम ऐसे ही मान के चल लें कि कैपिटल R है क्योंकि दोनों केसेस में सेम है। दो आपको मेटल वायर्स दिए हैं जिनकी मटीरियल सेम है, लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो इसलिए हमने मान लिया कि आपका R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, और ऐसे दो रेजिस्टर्स हैं दोनों की रेजिस्टेंसेज इक्वल है। अगर सीरीज में लगे होंगे तो 2R हो जाएगा, पैरेलल में लगे होंगे तो R बाय 2 हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करते हुए आप लिखोगे H1 इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 2R। अब H2 जो होगा, इस केस में आपने रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया हुआ है, तो आप लिखेंगे H2 इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर अपॉन R बाय 2। अब यहाँ पर आप R by 2 से कंफ्यूज ना होएं, आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर आपने सेम रजिस्टर्स लगा रखे हैं, मल्टीपल रजिस्टर्स, मान लो 3 या 4 कितने भी लगा रखे हैं, तो आप जब रेजिस्टेंस टोटल कॉम्बिनेशन का निकालेंगे तो वो R by 2 या फिर R by 3 हो जाता है। इसे आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं। आप कैसे लिखते हैं जब पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालते हो, तो आप लिखते हो 1/R equivalent = 1/R1 + 1/R2। अब यहाँ पर जो R1 और R2 है ये तो इक्वल है, तो आप कैसे लिखेंगे 1/R equivalent = 2/R, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो R equivalent की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R by 2 आ जाएगी। तो पैरेलल में अगर आपके पास दो इक्वल रेजिस्टर्स हैं और उनको आपने पैरेलल में लगाया हुआ है, तो आप उनकी जो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन की लिखेंगे वो R by 2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास H1 की वैल्यू कितनी आ गई हीट की, आपकी H1 की वैल्यू आ गई कैपिटल V² / 2R × t, और H2 की वैल्यू कितनी आ गई कैपिटल V² / R/2 × t। अब H1 / H2 कर दोगे तो आपको रेशो मिल जाएगा 1/4। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रेशो मिल जाएगा 1/4 सीरीज बाय पैरेलल जो हीट है उसका रेशो आ रहा है 1/4। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर किन्हीं दो पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता लगाना है, तो उसके लिए उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमें पैरेलल में वोल्ट मीटर को लगाना होता है। तो आप लिखेंगे कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाना होगा उन दो पॉइंट्स के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉपर वायर हैज डायमीटर ऑफ 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 × 10⁻⁸ ohm। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ohm। हाउ डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला यूज करना है, कैपिटल R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, रेजिस्टिविटी आपको गिवन है 1.6 × 10⁻⁸ ohm और R की वैल्यू भी गिवन है 10 ohm, और आपको डायमीटर गिवन है। यहाँ पर आपको रेडियस नहीं गिवन है, आपको डायमीटर गिवन है। तो आप जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको पाई आर स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर डी दिया है, डायमीटर दिया है, तो आप लिखेंगे पाई इंटू डी बाय 2 होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप वैल्यूज वगैरह पुट कर लेंगे तो आपको लेंथ की जो वैल्यू मिलेगी वो अप्रोक्सीमेटली मिलेगी 122.72 meters। तो यहाँ पर बेसिकली आपको सारी चीजें फॉर्मूले में ही पुट करनी है, कैपिटल R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है, और आप लोगों को रेजिस्टिविटी की भी वैल्यू गिवन है, आपको लेंथ निकालना है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप लोग निकाल सकते हैं। आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, पाई इंटू डी बाय 2 होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली आएगी 0.19625 × 10⁻⁶ meters², क्योंकि आप हर चीज को ऐसा यूनिट में निकाल रहे हैं, और आपको रेजिस्टिविटी गिवन है। तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आप लिखेंगे आर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन रेजिस्टिविटी, आर इंटू कैपिटल ए अपॉन रो इज इक्वल टू एल, और आपको एल ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर लोगे तो आपकी लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 122.72 meters आएगी। उसके बाद नेक्स्ट केस आपसे बोला है कि अगर आपने अपने रेजिस्टेंस को चेंज करना है तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने डायमीटर को डबल कर दिया है, लेंथ आपने कॉन्स्टेंट रखी हुई है। अगर आपसे ऐसे कहा जाए कि डायमीटर को डबल किया है, इसका मतलब आपसे ये कह रहे हैं कि आपके पास जो गिवन वायर है उसकी आपने मोटाई चेंज कर दी, उसको आपने और थिक बना दिया है। अब इस केस में आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि लेंथ के साथ आपने क्या किया है, तो ऐसे में हम क्या मान के चलते हैं। मान लो अगर हमें कुछ नहीं कहा हो, हमें सिर्फ ये कहा हो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया है, तो हम लेंथ के बारे में क्या मान के चले। मान लो अगर आपके पास कोई वायर है, उसकी कुछ लेंथ है, उसकी कुछ थिकनेस भी है, आप उसकी थिकनेस को डबल करना चाहते हैं तो लेंथ पर भी तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर लेंथ के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के चलते हैं। जो हमारा लेंथ, जो हमारा वायर है, उसकी कुछ लेंथ है, कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। लेंथ को आपने स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर दिया है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप पाई आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एल। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हमें लेंथ एक ही बताया हो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने डबल कर दिया, लेंथ के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम ऐसे में वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के चलते हैं और उस हिसाब से अपना जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपको अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने जो आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उसको कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा, आपको उसमें कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कैपिटल आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब यहाँ पर तो कहीं वॉल्यूम है ही नहीं, वॉल्यूम का कोई टर्म ही नहीं है, तो कांस्टेंट कैसे करोगे? आप चेक करना चाहते हो कि रेजिस्टेंस किस तरीके से डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, तब जब आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, आप वॉल्यूम को लाएंगे, वॉल्यूम नहीं है तो आपको वहां पर क्रिएट करना है। आप वॉल्यूम को लाने के लिए क्या करेंगे, आपके पास लेंथ है और आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब ऊपर लेंथ की लिए आपने स्मॉल एल लिखा हुआ है और नीचे आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए पाई आर स्क्वायर लिखा होगा, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं किसी एक साइड पर हमें वॉल्यूम की टर्म लानी पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, एल इंटू ए कर देंगे अगर ऊपर, तो ऊपर नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आपको मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आर इज इक्वल टू रो एल इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि आपने ऊपर नीचे कैपिटल ए से मल्टीप्लाई कर दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ए इंटू एल तो आपका वॉल्यूम हो गया, तो आपके लिए फॉर्मूला क्या बन गया, आर इज इक्वल टू रो इंटू वी, वी क्या है, वॉल्यूम है, तो आपको फॉर्मूला मिला आर इज इक्वल टू रो इंटू वी अपॉन ए स्क्वायर। अब हम बेसिकली चेक करना चाहते थे कि रेजिस्टेंस किस तरीके से डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर उस सिचुएशन में जब आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो ऐसे में आप देख पा रहे होंगे आसानी से कि आर जो है इज इक्वल टू रो इंटू वी अपॉन ए स्क्वायर है और वॉल्यूम कांस्टेंट है और रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर आपसे बोला गया कि आपने क्या किया है, आपने डायमीटर को डबल कर दिया है, तो ए स्क्वायर में आप या फिर लिखें पाई आर स्क्वायर या फिर आप लिखें पाई डी स्क्वायर बाय फोर, इनमें से आप कुछ भी लिखेंगे, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी रेज टू पावर फोर। ये कहाँ से आया, ये इसलिए आया क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ए स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर बाय फोर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे प्रोपोर्शनल होगा डायमीटर के ऊपर, आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी रेज टू पावर फोर। अब आपने डायमीटर को डबल कर दिया, इसका मतलब रेजिस्टेंस को वन फोर्थ कर दिया है, क्योंकि आपका जो नया फॉर्मूला बनेगा उसमें क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू या फिर आर इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी रेज टू पावर फोर है, अब डी की जगह ट्वाइस ऑफ डी हो जाएगा, तो आप लिखेंगे R is proportional to 1 upon twice of D raised to power 4, तो 2 raised to power 4 हो जाएगा, तो 2 raised to power 4 कितना होता है, 2 raised to power 4 होता है 8। तो आपकी resistance की जो नई value आ जाएगी वो पहली वाली resistance के 1/8 होगी, 10 by 8 हो जाएगा। तो ये तो तब जब आपने volume को constant मान के चले हुए हैं, क्योंकि लेंथ के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है, सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में बोला गया है कि डायमीटर को डबल कर दिया है। अब अगर हम दूसरा सिचुएशन ये मान के चलें कि हमें बोला गया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप डबल कर रहे हैं लेकिन लेंथ कांस्टेंट है, तो ऐसे में तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि उस सिचुएशन में लेंथ कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन कैपिटल ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर बाय फोर। तो आप लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी स्क्वायर। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप डायमीटर डबल करते हैं तो आर की वैल्यू वन फोर्थ हो जाएगी। तो यहाँ पर दो सिचुएशंस आ सकती हैं, पहली तो वो सिचुएशन जिसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया है तो ऐसे सिचुएशन में आर इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी रेज टू पावर फोर, लेकिन अगर लेंथ को कांस्टेंट रखा गया और सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर रहे हैं, तो वैसे आप देखेंगे तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि आर इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी स्क्वायर। तो मैंने आपको दोनों ही सिचुएशंस बता दी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं तो उस केस में रेजिस्टेंस डायमीटर के वन फोर्थ के डायमीटर के पावर फोर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/d^4, डी इज डायमीटर। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं, सिर्फ लेंथ कांस्टेंट रख रहे हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में हम चेंज ला रहे हैं, तो उस केस में रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/d^2। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रेजिस्टर फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी अक्रॉस द रेजिस्टर आर गिवन बिलो। आपको एक टेबल बना करके दिया है जिसमें करंट की वैल्यू दी है एम्पियर में और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी है आपको कैपिटल वी वोल्ट्स में। तो आप देख सकते हैं आपको इस टेबल में कुछ अलग अलग वैल्यूज दी हैं और आपको बोला है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन कैपिटल वी एंड आई एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर। तो आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है और एक ग्राफ बना देना है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो वी बाय आई आप ग्राफ बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे जो पूछा है कैलकुलेशन के बारे में, वो पूछा है आपको रेजिस्टेंस बतानी है रेजिस्टर की। तो रेजिस्टेंस कैसे बताते हैं, आपके पास ओम्स लॉ का फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी बाय आई। तो कोई भी एक सिचुएशन ले लो और V by I कर दो। फर्स्ट सिचुएशन अगर हम लेते हैं तो कैपिटल V की वैल्यू कितनी है, वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस की क्या वैल्यू है, 1.6। तो 1.6 डिवाइडेड बाय 0.5 वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 3.2। तो फर्स्ट सिचुएशन में अगर आप कैलकुलेट करते हैं V by I तो आपको 3.2 ओम रेजिस्टेंस मिलती है। सेकेंड सिचुएशन में कैलकुलेट करते हैं तो 3.4/1 हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 3.4 दिया है और करंट 1 एम्पियर दिया है। तो 3.4/1 करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा 3.4 ओम। थर्ड सिचुएशन में देखें तो 3.35 ओम मिल रहा है आपको कैलकुलेशन करने के बाद। तो आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं कि 3.35 के आसपास आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो 3.35 ओम आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो, When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of resistance of the resistor. ये बहुत easy है क्योंकि आपको सीधा सीधा ओम्स लॉ लगाना है और R का value आप लोगों को ओम्स लॉ से क्या पता होता है, R is equal to capital V upon capital I, potential difference upon current. Potential difference आपको given है 12 volt, current आपको given है 2.5 milliampere, तो आप लिखेंगे R is equal to 12 upon 2.5 into 10^-3, क्योंकि milli का meaning होता है 10^-3। Solve करेंगे तो आपको resistance की value मिल जाएगी 4.8 into 10^-3 ohm, तो आप लिख सकते हैं कि 4.8 किलो ohm का आपका resistance का value आया है। उसके बाद next question आप देखो, question number 9, a battery of 9 volt is connected in series with resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm and 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through 12 ohm resistor? इसमें बोला है कि सभी के सभी resistors को अपने series में लगाए हुआ है, सेमी करंट फ्लो करेगा हर एक resistance के थ्रू। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस तो गिवन है 9 वोल्ट। अब आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी सारे resistances गिवन है उन सभी का पहले तो आप कॉम्बिनेशन का resistance निकालो। 12 ओम प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 ये सारा ऐड कर दोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 13.4 ओम। तो रेजिस्टेंस जो कॉम्बिनेशन का आया वो कितना है, 13.4 ओम, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 9 वोल्ट। अब आपको करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट के लिए आपको क्या करना होगा, V बाय R करना होगा। V की वैल्यू है 9 वोल्ट, R की वैल्यू है 13.4 ओम। आप कैलकुलेट कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 0.671 एम्पियर। तो इतनी वैल्यू की करंट फ्लो कर रही है और ये सेम करंट हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। अब यहां पर देखो आपको क्या एक और कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर पैरेलल में आपने बड़े सारे रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं, मान लो n वैल्यूज के रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं, n टाइम्स मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे मान लो 6 की जगह मैं n कह रही हूँ कि आपने बहुत सारे मल्टीपल रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं और उनको भी आपने कैसे लगाए हुए हैं, पैरेलल में लगाए हुए हैं, और एक सिंगल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू है 176 ओम। तो ऐसे में मान लो आपने n ऐसे इस तरीके के 176 ओम के वैल्यू के रेजिस्टर्स n टाइम्स आपने लगाए हैं, तो आपका जो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आएगा वो कैसे आएगा,
176/n। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आप याद भी रख सकते हैं कि अगर आप पैरेलल में लगा रहे हैं सेम वैल्यू के रेजिस्टर्स को, उनकी रेजिस्टेंस सेम है और मल्टीपल टाइम्स आप लगा रहे हैं, मल्टीपल रेजिस्टर्स आपने लगाए हैं, सपोज n रेजिस्टर्स आपने लगाए हैं, तो आपका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो फाइनली आता है वो होता है R by n, और यहाँ पर आपको R गिवन है 176 ओम, तो आप लिखेंगे ओम्स लॉ लगाएंगे आप, कैपिटल V इज इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू गिवन है 5 एम्पियर और आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है 220 वोल्ट। आपसे यहाँ पर n पूछा गया है क्योंकि आप लोगों को कैपिटल R की वैल्यू तो गिवन है 176 ओम, और यहाँ पर आप जब फॉर्मूला लगाते हैं, ओम्स लॉ लगाते हैं, तो वैल्यूज तब की पुट करते हैं जो फाइनल सिचुएशन होता है। तो फाइनल सिचुएशन में जो आपने पैरेलल में n रेजिस्टर्स लगा दिए हैं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 176/n, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। तो अब आप V इज इक्वल टू आई आर में फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डालिए, V की जगह लिख दीजिए आप 220 वोल्ट, I की जगह लिख दीजिए 5 एम्पियर और R की जगह लिख दीजिए 176/n। सॉल्व करेंगे तो आपको जो n की वैल्यू मिलेगी वो अप्रोक्सीमेटली 4 मिलेगी, तो आपको 176 ओम के चार रेजिस्टर्स चाहिए होंगे 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में लगाने के लिए, ताकि 5 एम्पीयर का करंट फ्लो करे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम, फर्स्ट सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन 4 ओम। अब देखो अगर आपने सभी रेजिस्टर्स, तीन रेजिस्टर्स हैं आपके पास और तीनों के तीनों जो हैं हर एक रेजिस्टर की वैल्यू 6 ओम की है, अगर तीनों को आपने सभी को सीरीज में लगाया होता तो 9 ओम नहीं मिलता आपको, आपको कितना मिलता, आपको मिलता 6 × 3 18 ओम आपको मिलता, लेकिन आपको 9 ओम मिला। इसका मतलब आपने कुछ अलग तरीके का कॉम्बिनेशन किया हुआ है, तो कुछ अलग तरीके का कॉम्बिनेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास तीन रेजिस्टर्स हैं और तीनों के तीनों 6-6 ओम के हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले दो 6-6 ओम के रेजिस्टर्स लेंगे और उन्हें पैरेलल में लगा देंगे, तो पैरेलल में लगाने से आपकी क्या रेजिस्टेंस आ जाएगी, उन दो 6-6 ओम के रेजिस्टर्स को जिनको आपको पैरेलल में लगाया हुआ आपने, उनका कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हो जाएगा 6/2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा आर बाय एन होता है जब हम लोग सेम वैल्यू के रेजिस्टर्स यूज कर रहे हैं और पैरेलल में यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है वो R by N बन जाता है। N यहाँ पर क्या है, कितने रेजिस्टर्स आपने पैरेलल में लगाए, ये होता है N। तो यहाँ पर N की जगह आप 2 ले सकते हैं क्योंकि आपने दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया हुआ है जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 6 ओम है, तो R की जगह लिख देंगे 6 और N की जगह लिख देंगे 2, तो R by N इज इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर आपको क्या मिल गया कि दो अगर रेजिस्टर्स आप पैरेलल में लगाते हैं तो उससे जो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आएगा वो 3 ओम आ जाएगा। अब ये दो तो आपने पैरेलल में लगाया, दो को पैरेलल में लगा के इसके कॉम्बिनेशन को थर्ड वाले के साथ सीरीज में लगा दोगे तो आपको 9 ओम का रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा कि आपने दो को पैरेलल में लगाया हुआ है, 6-6 ओम के दो रेजिस्टर्स को आपने पैरेलल में लगाया हुआ है, तो इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आया, 3 ओम आया। अब इसको आपने 3 ओम वाले को आपने 6 ओम के साथ, एक और 6 ओम आपके पास बचा हुआ है तो इस 6 ओम के साथ आपने सीरीज में लगा दिया, तो अब ऐड हो जाएगा 3 ओम प्लस 6 ओम 9 ओम हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट वाला सिचुएशन सॉल्व हो गया। अब सेकंड सिचुएशन में आपको बोला है कि आपने क्या किया है, आपने रेजिस्टर इस तरीके से लगाया कि आपको 4 ओम मिलना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करोगे, इस बार आप क्या करोगे, आप 4 ओम लाना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको दो रेजिस्टर लेने हैं, सबसे पहले दो रेजिस्टर लो और इनको सीरीज में लगा दो, दो आपने कौन कौन से 6-6 ओम के दो रेजिस्टर लिए उनको सीरीज में लगा दिए, तो इनके कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना आया, 6+6 12 ओम हो गया, तो इस तरीके से 12 ओम आपको दो 6-6 ओम के रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाने से मिला। अब ये जो सीरीज का कंबाइंड आप लोगों को रेजिस्टेंस मिला है 12 ओम, इसको एक 6 ओम के साथ पैरेलल में लगा दो, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 1/6+1/12 इज इक्वल टू 1/R, फाइनल जो आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो 1/R इक्विवेलेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6+1/12, आप 6 को भी 12 आप एलसीएम ले लोगे तो आपको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/12+1/12, और सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/12, फर्दर सॉल्व करोगे तो आप लिख सकते हो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 ओम, तो इस तरीके से आपको सेकंड सिचुएशन में करना है। अब यहाँ पर आपको ट्रिक बस यही समझाई जा सकती है कि आपको कॉम्बिनेशंस तो खुद ही सोचने होंगे, बस आपको ये पता लग जाएगा कि ना तो आपने कम्प्लीटली सभी को पैरेलल में लगाया हुआ है, ना आपने कम्प्लीटली सभी को सीरीज में लगाया हुआ है। क्योंकि अगर आपने सभी को सीरीज में लगाया हुआ तो आपको 18 ओम मिलता, अगर सबको पैरेलल में लगाया हुआ होता तो आपको 3 ओम मिलता, क्योंकि 6/3 हो जाता, 6 तो रेजिस्टेंस है और 3 रेजिस्टर्स हैं ऐसे आपके पास, तो 6/3 आप कर देंगे तो 2 ओम आपको मिल जाता। ये तो तब होता जब आपने तीनों के तीनों रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया हुआ है, तो ना आपने पैरेलल में तीनों के तीनों को लगाया हुआ है, ना आपने तीनों के तीनों को सीरीज में लगाया हुआ है, आपने कुछ अलग तरीके का कॉम्बिनेशन किया है। अब ये कॉम्बिनेशन आपको खुद सोचना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट। How many lamps can be connected in parallel with each other across the two series of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो देखो आपको क्या क्या गिवन है वो चीजें यूज किया करो। सबसे पहले आपको क्या गिवन है कि बल्ब है उसकी पावर रेटिंग कितनी है 10 वाट, और ये इसको यूज करने के लिए जो सप्लाई लाइन है वो 220 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस की सप्लाई लाइन है, तो आप पावर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको पावर ही गिवन है। तो आप लिखेंगे P = V² / R, और इससे आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा क्योंकि आपको रेजिस्टेंस से ही पता चलेगा कि कितने आपने रेजिस्टर्स यूज किए, यानी कि कितने बल्ब आपने यूज किए। तो आप लिखेंगे R = V² / P, और V की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 220 का होल स्क्वायर अपॉन 10। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी रेजिस्टेंस की 4840 ओम। 4840 ओम का बल्ब है आपका। अब आगे पूछा है कि इतने रेजिस्टेंस का कितना बल्ब आप लगा सकते हैं अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर रहे हैं 220 वोल्ट और करंट जो पास करा रहे हैं वो 5 एम्पियर का है। और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि आपने ये सारे के सारे जो बल्ब्स लगाए हैं इनको आपने पैरेलल में लगाया है। बल्ब को कहो या रेजिस्टर्स को कहो, तो रेजिस्टर्स को आपने बेसिकली पैरेलल में लगाया हुआ है। तो आपने ऐसा एक और क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले जिसके अंदर आपको रेजिस्टेंस गिवन था और आपको पूछा था कि आपने कितने ऐसे रेजिस्टर्स यूज किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे V = IR, और R की जगह लिखेंगे आप R/N, कैपिटल R/N, और कैपिटल R की जगह आप क्या लिखेंगे 4840 ओम, क्योंकि आपने निकाला हुआ है कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 4840 ओम है। और आपको ऐसे कितने बल्ब लगाने हैं इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा V = IR, और R की जगह आप लिखेंगे R/N, N फाइंड आउट करना है। तो आप क्या लिखेंगे फाइनली, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे V की जगह 220 वोल्ट, I की जगह लिख देंगे 5 एम्पियर, और R की जगह आप लिखेंगे R/N, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V = IR, तो इसमें जो फाइनली R है वो बिल्कुल लास्ट में जो आपका रेजिस्टेंस मिल रहा है उसके बारे में बोलते हैं। तो आपने मान लो 4840 ओम के N रेजिस्टर्स लगाए हैं, तो इसका कंबाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R/N आएगा, और R जो है वो कितना है 4840 ओम है। तो आपका फॉर्मूला हो गया 220 = 5 × 4840/N। N की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करके निकालोगे तो आपको मिलेगी 110। तो आपको अप्रोक्सीमेटली 110 रेजिस्टर्स ऐसे बल्ब्स यूज करने हैं इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला है अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल्स A and B each of 24 ohm resistance which may be used separately in series or in parallel, what are the currents in these cases? तो यहाँ पर basically आपको तीन cases बताए गए हैं। पहले केस में आपको बोला है कि आपने resistance जो है वो separately use किया है, दूसरे केस में बोला है कि आपने resistors को series में use किया है, तीसरे केस में बोला है कि आपने resistors को parallel में use किया है। तो तीनों अलग अलग cases में आपको बताने हैं कि current कितना flow कर रहा है। तो मान लो कि जब पहले सिचुएशन आप देखें जिसमें आपने सेपरेटली यूज किया है, इसका मतलब है कि आप अलग अलग से यूज करें, इसका मतलब एक बारी 24 ओम को लगा के यूज करें, दूसरी बारी अलग सिचुएशन में 24 ओम को लगा करके यूज करें, तो इस बारी आप रेजिस्टेंस की जो वैल्यू लेंगे वो कितनी लेंगे, वो 24 ओम ही लेंगे। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए आप ओम्स लॉ लगाते हुए लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू वी बाय आर। वी की जगह आप लिखेंगे 220 वोल्ट, आर की जगह आप लिखेंगे 24 ओम। 24 ओम क्यों लिया ये आपको समझ में आना चाहिए, बाकी इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको बोला कि सेपरेटली यूज करें। सेपरेटली यूज करें मतलब एक बारी एक रेजिस्टर लगाया हुआ है और एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 24 ओम। तो आप लिखेंगे 220 अपॉन 24, उसके बाद आपको करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने पर मिल जाएगी 9.166 एम्पियर। उसके बाद दूसरा केस बोला है कि आपने इस बार दोनों रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया हुआ है और दोनों रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं, 24 ओम के हैं, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 24 प्लस 24 48 ओम आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और ऐसे अगर आपने दो रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं तो आपको करंट कितना मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका अभी भी सेम है 220 वोल्ट। करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको V by R करना होगा 220 अपॉन 48 ओम, तो करंट की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 4.58 एम्पियर। उसके बाद थर्ड केस में आपको बोला कि आपने इस बारी दो रेजिस्टर्स यानी दो कॉइल्स को पैरेलल में लगाया हुआ है और आपको पता है पैरेलल में आपने अगर लगाए हुए रेजिस्टेंसेस सेम है तो आप रेजिस्टेंस फाइनल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, आर बाय एन करके निकाल सकते हैं। और आर आपको लेना होता है कि पहले क्या सिचुएशन, जब सबसे पहली सिचुएशन थी तो उसमें आपके रेजिस्टर्स की कितनी वैल्यू थी, 24 ओम, 24 बाय 2 कर देंगे क्योंकि आपने फाइनली जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है उसको निकालना होता है। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप बेसिकली दो रेजिस्टर्स लगा रहे हैं तो आपको पैरेलल में लगाते वक्त इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पर R1 और R2 इक्वल हैं तो आप लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24। और सॉल्व करोगे तो आप लिख सकते हो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/24। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 24/2। तो आप इतना बड़ा सारा यूज ना करके स्टेप्स आप सिंपल ये याद रख सकते हैं कि अगर आपने सेम वैल्यू के रेजिस्टर्स लिए हुए हैं और उनको पैरेलल में लगाया हुआ है तो आप ये देखो कि कितने रेजिस्टर्स आपने पैरेलल में लगाए हैं। जितने भी रेजिस्टर्स आपने पैरेलल में लगाए हैं उनको आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू से डिवाइड करना होता है। जैसे कि यहाँ पर आपने दो रेजिस्टर्स लिए हुए हैं 24 ओम के जिनको आपने पैरेलल में लगाया हुआ है तो आपको 24 बाय 2 करना है। 2 क्यों किया, 24 बाय 2 क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि आपने दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया। और 24 बाय 2 क्यों किया, 24 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि 24 ही एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस गिवन है, तो एक रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस गिवन होगी उसको आपको नंबर ऑफ रेजिस्टर्स से डिवाइड करना होता है अगर आपको पैरेलल में फाइनली जो रेजिस्टेंस निकालना है वो फाइंड आउट करना है। तो आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू वी बाय आर और आपने पैरेलल में जो आर निकाला है फाइनली वो कितना है 12 ओम। 12 ओम इसलिए लिखा क्योंकि 24 बाय 2 किया है इसलिए आपने 12 ओम लिखा है। तो आपको करंट की जो फाइनली वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, 220 अपॉन 12 विच इज इक्वल टू 18.33 एम्पियर। तो इस तरीके से तीनों केसेस में सेपरेटली आपने करंट फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, इसमें पूछा है कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। फर्स्ट सिचुएशन 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर्स। सेकेंड सिचुएशन अ 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर्स। अब सबसे पहले तो ये समझ लो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको दो सिचुएशंस बताई हैं, दोनों ही सिचुएशंस में आपने दोनों बारी दो ओम के आपने रजिस्टर यूज किया हुआ है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो दो ओम का आपने रजिस्टर यूज किया हुआ है दो अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, इसके थ्रू जो पावर यूज हो रही है इसके द्वारा वो कितनी है, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो आपसे पावर यूज पूछ रहे हैं बाय 2 ओम रजिस्टर्स, लेकिन सिचुएशंस अलग अलग बताइए। पहली सिचुएशन में आपको ये बोला कि आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया हुआ है वो 6 वोल्ट यूज किया हुआ है क्योंकि बैटरी 6 वोल्ट की है, और यहाँ पर आपने इस टाइम पर 2 ओम का जो रजिस्टर लगाया है उसके साथ में एक और रजिस्टर लगाया हुआ है सीरीज में 1 ओम का, तो ऐसे में पावर कितना कंज्यूम कर रहा है आपका 2 ओम का रजिस्टर। तो आपको क्या करना होगा, आपको बेसिकली फाइंड आउट करना होगा कि पावर कितना है। उसके लिए पावर की वैल्यू क्या होती है, पावर की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, कैपिटल वी इंटू कैपिटल आई। पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको पता है कि 6 वोल्ट है। अब आप जानना चाहते हैं कि करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर। जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा वही 2 ओम के रेजिस्टर से भी करंट फ्लो कर रहा होगा क्योंकि उसे सीरीज में लगाया गया है। तो आपको क्या करना होगा, ओम्स लॉ लगा करके आपको करंट फाइंड आउट करना होगा। करंट फाइंड आउट कर लोगे तो आपके पास पावर का एक और फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पर आई फाइंड आउट करना चाहते हो, करंट फाइंड आउट करना चाहते हो सर्किट के अंदर जो फ्लो कर रही है, क्योंकि उतनी ही करंट 2 ओम के थ्रू भी फ्लो कर रही होगी। तो I इज इक्वल टू V बाय R, और R की जगह आप लिख सकते हैं 2+1=3, क्योंकि इनको सीरीज में लगाया हुआ है दो रेजिस्टर्स को, एक का 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक का 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाय R, V इज 6 वोल्ट एंड R इज इक्वल टू 3 ओम कंबाइंड, तो आप लिख सकते हैं 6/3 जो होगा हमारा करंट का वैल्यू आ जाएगा 2 एम्पीयर। उसके बाद आपको पता लगाना है कि 2 ओम के रेजिस्टर के थ्रू पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, तो आप लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आर, आई की वैल्यू आपके पास है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि 2 ओम का रेजिस्टर है, तो आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4 × 2, 8 वाट का पावर कंज्यूम कर रहा है 2 ओम का रेजिस्टर। उसके बाद दूसरे सिचुएशन में आपको बोला कि इस बारी आपने 4 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है इन पैरेलल विद 2 ओम रेजिस्टर, और उसके साथ में आपने एक 12 ओम का रेजिस्टर भी पैरेलल में लगाया हुआ है। तो सेकंड सिचुएशन के अंदर आपने सभी चीजें पैरेलल में लगाई हुई हैं, और पैरेलल में आपको पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि 2 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस और 12 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस ही 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, आप पावर निकाल सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला यूज करके। तो 2 ओम के जो रेजिस्टर है उसके थ्रू पावर जो कंज्यूम हो रही है उसके लिए आप लिखेंगे वी स्क्वायर बाय आर, और वी की वैल्यू गिवन है 4 वोल्ट, आप लिख सकते हैं 4 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो आपको जो पावर कंज्यूम्ड मिल जाएगी वो मिल जाएगी 8 वाट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोला है 2 लैंप्स, 1 रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट एंड अदर 60 वाट एट 220 वोल्ट एंड दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। सप्लाई वोल्टेज आपको 220 वोल्ट गिवन है और आपसे बोल रहे हैं कि आपके पास 2 लैंप्स हैं, बेसिकली 2 रेजिस्टर्स हैं, और इन 2 रेजिस्टर्स को आपने किस तरीके से लगाया हुआ है, पैरेलल में लगाया हुआ है, करंट जो ड्रॉ कर रहे हैं ये पूछा जा रहा है। अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2 रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया हुआ है, और आपने पढ़ा है कि 2 रेजिस्टर्स को अगर पैरेलल में लगाया जाए और अगर हम टोटल करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं जो सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए हमें I1+I2 करना होता है। तो आपको इंडिविजुअली करंट जो फ्लो कर रहे हैं दोनों रेजिस्टर्स में वो फाइंड आउट करना है, ऐड कर देंगे तो टोटल करंट इन दी सर्किट आपको पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पावर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, और अगर फर्स्ट वाली सिचुएशन देखी जाए तो पावर आपको गिवन है 100 वाट और वी की वैल्यू भी गिवन है 220 वोल्ट, आई आपको पता लग जाएगा। आई को आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको लिखना होगा पी बाय वी इज इक्वल टू आई, पी की जगह लिखेंगे 100 वाट और I फाइंड आउट करने के लिए P बाय V करना होगा, तो 100 अपॉन 220 वोल्ट फर्स्ट सिचुएशन में, आपको जो फर्स्ट सिचुएशन में करंट मिलेगी वो मिलेगी 100 अपॉन 220 एम्पीयर, सेकेंड सिचुएशन में सिमिलरली आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 60 अपॉन 220 एम्पीयर, दोनों को ऐड कर देंगे तो आप लिख सकते हैं 100 अपॉन 220 प्लस 60 अपॉन 220, आंसर अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 0.727 एम्पीयर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 160 अपॉन 220। तो आपने बेसिकली किया क्या है, आपने ऐड किया है इंडिविजुअल करंट्स जो फ्लो कर रहे हैं उनको ऐड किया है, तो टोटल करंट आपको मिला है, तो आपने लिखा है 100 अपॉन 220 प्लस 60 अपॉन 220, ऐड करेंगे तो आप लिख सकते हैं 160 अपॉन 220, आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.27 एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा है विच यूजेस मोर एनर्जी, 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स। तो आपको एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, पावर इनटू टाइम करना होता है। पावर फर्स्ट केस में आपको गिवन है 250, टाइम गिवन है 1 आवर, 1 आवर की जगह आपको उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा, सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 आवर की वैल्यू होती है 3600 सेकंड्स। तो आपको बेसिकली क्या करना है, फर्स्ट सिचुएशन में हीट फाइंड आउट करने के लिए, एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आप लिख सकते हैं 250 × 3600 अब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 9 × 10⁵ जूल्स। सेकेंड सिचुएशन में आपको बोला कि पावर जो है वो है 1200 वाट, और टाइम जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको मिनट्स को भी सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 मिनट इज इक्वल टू 10 × 60, 600 सेकेंड्स हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 1200 × 600, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 7.2 × 10⁵। फर्स्ट सिचुएशन में आपको मिला था 9 × 10⁵, सेकेंड सिचुएशन में मिला 7.2 × 10⁵। 9 × 10⁵ ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब है टीवी अगर आप 250 वाट की यूज कर रहे हैं एक घंटे के लिए तो आपका ज्यादा एनर्जी खर्च हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोला है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर करंट फ्रॉम द सर्विस मेंस 2 आवर्स। 2 घंटे के लिए आपने 8 ओम के रेजिस्टेंस जो कि हीटर है, तो 8 ओम के रेजिस्टेंस में आपने 15 एम्पियर का करंट फ्लो कराया है 2 घंटे के लिए। आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है क्योंकि इसमें पूछा है रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। तो आपसे पूछा है बेसिकली आपसे पूछा है कि रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, यानी कि हीट बाय टाइम पूछा है, तो हीट बाय टाइम या फिर एनर्जी बाय टाइम पावर पूछा है यहाँ पर आपसे। तो आप लिख सकते हैं पावर की वैल्यू कितनी होती है, पावर की वैल्यू होती है I² × R। तो I की वैल्यू आपको गिवन है 15 का होल स्क्वायर कितना होता है 115 का होल स्क्वायर होता है 225। तो आपको बेसिकली करना है 225 × 8, आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा 1800 जूल्स पर सेकेंड, ये पावर हो जाएगी आपकी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, इसमें एक्सप्लेन द फॉलोइंग है, आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, आपसे पूछा है कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को 5 पार्ट्स दिए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर। और फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। इसमें मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि हम लोग टंगस्टन का क्यों यूज करते हैं फिलामेंट बनाने के लिए, बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए। तो देखो हम लोगों के पास टंगस्टन को यूज करने के बहुत से रीजंस हैं। पहला तो ये कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का वो बहुत ही हाई होता है। टंगस्टन एक छोटे टेम्परेचर पर नहीं मेल्ट करेगा, बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर ही मेल्ट करेगा, इतनी जल्दी इजीली वो मेल्ट नहीं करेगा, जो कि डिजायरेबल है। हम चाहते भी यही है कि फिलामेंट जो है वो हीट अप तो बहुत ज्यादा हो ताकि वो लाइट एमिट कर पाए, इतना ज्यादा वो हीट हो जाए कि वो ग्लो करने लगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो मेल्ट हो जाए क्योंकि उसके मेल्ट होते ही हमारा बल्ब काम करना बंद कर देगा। और टंगस्टन इस काम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 3000 से भी ऊपर के टेम्परेचर को वो सस्टेन करता है। अप्रोक्सीमेटली 3000 तक के टेम्परेचर को वो इजीली सस्टेन कर सकता है, 3000 डिग्री सेल्सियस। और टंगस्टन में ये भी एक खास बात है कि बहुत ज्यादा हाई हीट ये सस्टेन कर सकता है और ग्लो करने लगता है, तो इसीलिए हम लोग टंगस्टन को यूज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट, व्हाई आर दी कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। तो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं जैसे कि टोस्टर्स या फिर इलेक्ट्रिक आयरन्स, इनको हम बेसिकली इनका हीटिंग इफेक्ट हम देखना चाहते हैं, इनके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट का कन्वर्जन करना चाहते हैं इनटू हीट। और इसके लिए बहुत इजी तरीका है कि हम हाई रेजिस्टिविटी का मटेरियल यूज करें, अलॉयज की रेजिस्टिविटी हाई होती है, दे गेट इजीली हॉट, तो ये बहुत जल्दी से गर्म हो जाते हैं और बर्न इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इनका टेम्परेचर कोफिशियंट हाई होता है, हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट करते हैं, तो इसीलिए ये बर्न भी नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये डिजायरेबल होते हैं अलॉयज। नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं लेकिन फिर से बता देते हैं, डोमेस्टिक सर्किट्स के अंदर क्या होता है कि अगर आपने सीरीज में लगाया हुआ है तो आप बहुत सारे अप्लायंसेस यूज करते हैं और सभी अप्लायंसेस की करंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अगर आप सीरीज में लगाएं तो कांस्टेंट हो जाता है करंट, अगर आप डिवाइसेस जिनकी रिक्वायरमेंट अलग है करंट की, ऐसे में आप सभी डिवाइसेस को कांस्टेंट करंट देंगे तो ऐसा डिवाइस जिसकी करंट की रिक्वायरमेंट कम की थी अगर उसे आपने ज्यादा करंट दे दिया तो वो बर्न हो जाएगा, वो वहीं पर खराब हो जाएगा, तो इसीलिए हम सीरीज में नहीं लगा सकते। दूसरा कारण ये कि अगर आपने सीरीज में लगाया है किसी एक डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, इसका मतलब कि वो बर्न हो गया, उसमें अब करंट नहीं फ्लो करेगा। तो अगर आपने सीरीज में लगाया हुआ है उस डिवाइस को बाकी सारे कंपोनेंट्स के साथ भी, तो बाकी सारे कंपोनेंट्स में भी करंट फ्लो करना बंद कर देगा, तो ये नुकसान है सीरीज में लगाने के। तो इसीलिए हम पैरेलल में लगाते हैं। उससे क्या होता है कि सभी के सभी डिवाइसेस को पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट मिलता है, करंट वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और पैरेलल में लगाने से एक और फायदा होता है कि अगर कोई डिवाइस खराब हो जाता है तो बाकी डिवाइसेस प्रॉपरली फंक्शन करते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वैरी विद इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लास्ट पार्ट है ई पार्ट, वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। इसलिए क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, रेजिस्टिविटी कम होगी तो इलेक्ट्रिसिटी का लॉस कम होगा, तो इसीलिए हम लोग, और ये कंडक्टिंग होते हैं, रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस कम है, आराम से करंट का फ्लो होगा, दिक्कत नहीं होगी, तो इसीलिए हम लोग कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के वायर्स के रूप में। तो इस तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस भी समाप्त कर लिए हैं हम लोगों ने। आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को खुद से फिर से ट्राई करना है, पक्का ट्राई करना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आप लेवल देख सकते हैं, आप लोगों को छोटे मोटे लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि एक कोई हेल्प बुक भी ले लीजिए जिसमें आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड और क्वेश्चंस मिल जाए, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर के लिए, ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे से कर पाओ। तो आपको मेरी एडवाइस यही है कि आप कोई हेल्प बुक भी ले सकते हो जिसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करो ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। बाकी ये चैप्टर फिनिश हो गया, आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लो, कहीं कोई आपको डाउट्स हो तो आप अपने टीचर से ज़रूर पूछो। हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।